ओम शांति। अभी हम सभी के बीच में राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर सविता बहन जी उपस्थित है। हम सभी सविता बहन जी का स्वागत करते हैं। डॉक्टर सविता बहन मेडिकल प्रोफेशन से डॉक्टर है और बचपन से कहा जाएगा पिछले 40 वर्षों से बाबा के ज्ञान में है और पिछले 26 वर्षों से यहाँ पर आबू में सेवा में उपस्थित है। विशेष करके अपनी दादी प्रकाशमणि जी की सेवा में थे एज ए डॉक्टर, इसलिए बहुत दादी जी के अंग संग रहे हुए हैं। अभी कई सेवाओं में उपस्थित है परंतु विशेष करके महिला विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी है, एक फैकल्टी के रूप में भी बाबा की सेवा में उपस्थित है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि अभी हमारे हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स इसी कहा जाएगा, चाहे पांडव भवन है, चाहे शांतिवन है, ज्ञान सरोवर है, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स एक साथ कई प्रोग्राम्स चलते हैं। तो विशेष करके राजयोग शिविर के लिए अथवा एज ए फैकल्टी प्रवचन के लिए भी आपको विशेष सेवाएं मिलती है और आप बहुत रुचि से प्यार से सेवा करते हैं। आपका विषय है फरिश्ता रूप द्वारा मनसा सेवा के प्रयोग। पहले स्कूल कॉलेज में जाया जाता है, डिग्री ली जाती है और फिर जॉब पर जाते हैं, है ना? तो दिन में आप सभी ने डिग्री ले ली है मैं समझती हूँ, है ना? फरिश्ता बन गए सभी। तो अभी फरिश्ता बन गए तो फिर क्या करना पड़ेगा? सेवा में उपस्थित होना पड़ेगा, है ना? तो सेवा में कैसे उपस्थित होंगे वो डॉक्टर सविता बेन अपना अनुभव सहित हमारे साथ चर्चा करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, दुनिया ही संकल्प की दुनिया बनी हुई है, तो कैसे हम मनसा सेवा करें वो हमारे साथ अपना अनुभव शेयर करेंगे डॉक्टर सविता बेन। ओम शांति।
ओम शांति। आज आपके पुरुषार्थ का फरिश्ता दिवस है, तो सुबह से ही आप फरिश्ता बनने का अभ्यास कर रहे होंगे, जो ये महसूस करते हैं कि आज हमने फरिश्ता स्थिति का अनुभव किया तो हमारे पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य ही है। आज पट्टी का शायद अंतिम दिन है, तो हमारे पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य ही है फरिश्ता बनना। जैसे डिग्री हम कहते हैं, कोई भी पढ़ाई हम पढ़ते हैं तो फिर लास्ट में डिग्री मिल जाती है, तो ये भी हमारे पुरुषार्थ का जो अचीवमेंट है। ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ किया तो देवता बनने का लक्ष्य है, लेकिन उसके बीच में पहले हम संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करेंगे, फरिश्ता बनेंगे। फरिश्ता स्थिति बाबा कहता है वो स्थिति है जिसमें सर्व रिश्ते एक ही बाप से हों। फरिश्ता माना जिसका और किसी से कोई रिश्ता ना हो। तो ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, गृहस्थ में अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हैं, अलौकिक जीवन भी हमारा है, दैवी परिवार भी है, बहुत रिश्ते हैं। ऐसा हो सकता है कि सभी रिश्तों से मन न्यारा होकर के सदा ही एक बाप दूसरा ना कोई इस लगन में मगन रहे। थोड़ा समय रह जाता है, योग करते हैं शायद उस समय, लेकिन बाद में ये संभव नहीं होता है। तो इसीलिए फरिश्ता बनने में समय लगता है। बाबा कहते हैं एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। पुरुषार्थ की तीव्रता इतनी भी हो सकती है कि एक सेकंड में भी हम वो प्राप्ति कर सकते हैं, और नहीं तो वर्षों भी लगते हैं। तो फरिश्ता स्थिति माना तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही संग सर्व संबंध निभाऊं। बाबा कहता है कि ऐसे नहीं बाबा से रिश्ते तो हैं, लेकिन ये थोड़ा मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, या ये मेरी सखी है, या थोड़ी दिल की बात करने वाला तो कोई चाहिए ना? मजबूरी होती है, कभी बीमार हो जाते हैं, तो कोई ना कोई से थोड़ा संबंध तो रखना ही पड़ता है, मजबूरी में भी रखना पड़ता है। लेकिन वो मजबूरी भी नहीं, मजबूरी में भी मजबूती हो कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, तब फरिश्ता बन सकते हैं। हर स्थिति में बाबा ही याद आए, कितना भी बड़ा विघ्न, कितनी भी बड़ी परीक्षा, उसमें पास होंगे तभी तो पास विद ऑनर होंगे। अगर उसमें ही कोई देहधारी याद आ गया तो बाबा कहता है कर्म बंधन बनता है। वर्तमान संगम युग का समय सर्व हिसाब किताब चुकतू करने का समय है। फरिश्ता माना बहुत हल्का, बहुत लाइट, डबल लाइट स्थिति हम कहते हैं फरिश्तों को। वैसे दुनिया में जो फरिश्ता रूप दिखाते हैं ना, उनको पंख दिखाते हैं, दो पंख हैं और वो उड़ते हैं, ऐसा ही देखते हैं। भारत में तो फरिश्ते शायद इतने प्रसिद्ध नहीं हैं, लेकिन विदेशों में फरिश्ते बहुत, आप कहीं भी जाएंगे उनके जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं उनपे फरिश्ते बने होते हैं, या उनके जो चर्चेस होते हैं वहां फरिश्ते ही बने होते हैं, या कोई भी विशेष स्थान भी होते हैं तो वहां भी फरिश्तों के ही चित्र बनाए हुए होते हैं। मुस्लिम धर्म में भी वो फरिश्ता, एक्चुअली ये उर्दू शब्द ही है फरिश्ता, इंग्लिश में एंजल्स बोलते हैं और उर्दू में उसे फरिश्ता, तो मुस्लिम भी वो सफेद पोशधारी फरिश्तों पर विश्वास करते हैं, तो अन्य धर्म भी फरिश्तों को मानते हैं। इसका मतलब यादगार है तो कभी ना कभी बाबा के बच्चों ने उस रूप में सेवा की है विश्व की आत्माओं की। भारत में देवी देवताओं का गायन है, इष्ट देव और इष्ट देवियां जो सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं वो देवी देवता हैं, इसलिए यहाँ फरिश्ते नहीं माने जाते लेकिन देवी देवता माने जाते हैं। लेकिन विदेशों में जो मनोकामना पूर्ण करने वाले माने जाते हैं वो फरिश्ते माने जाते हैं, क्योंकि वहां देवी देवताएं हैं ही नहीं। देवी देवताएं किस भूमि पर होते हैं? भारत भूमि पर ही होते हैं, लेकिन उस भूमि पर जो सेवा हुई है वो फरिश्तों के द्वारा हुई है, इसलिए यादगार भी फरिश्तों का ज्यादा है। तो फरिश्ते रूप में उड़ते हुए दिखाने का मतलब जो दो पंख हैं वो कौन से हैं? ज्ञान और योग के दो पंखों से हम उड़ती कला का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन उड़ता कौन है? जो हल्का है, जिस पर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं है। और जो बोझ होता है वो कई प्रकार का है। सबसे पहला बोझ तो बाबा कहता है कि पिछले जन्मों के जो हिसाब किताब हैं, जो पाप कर्म है, वो आत्मा के ऊपर बोझ है। और दूसरा बोझ है जिम्मेवारियों का, वर्तमान समय की जो जिम्मेवारियां हैं, अगर उसमें कहीं भी मेरापन है, ये मेरी जिम्मेवारी है, ये मुझे करना है, ये मेरा काम है, ये मेरी ड्यूटी है, जहां मैं और मेरापन है वो भी भारी बनाता है, वो भी एक प्रकार का बोझ है। फिर खुद के देह भान, अगर खुद के देह भान में रहते हैं तो वो भी आत्मा के ऊपर एक बोझ हो जाता है। तो इस बोझ से हल्का बनना, लाइट बनना और उड़ती कला का अनुभव करना। कैसे बनेंगे हल्का? तो उसकी विधि बाबा ने बताई है कि पूरी एकाग्रता से जब हम योग अभ्यास करते हैं, यानी जब योग अग्नि का रूप लेता है, जब ज्वालामुखी योग की स्थिति होती है, इतनी तीव्र लगन होती है, तब विकर्म भस्म होते हैं, जो पुराने हिसाब किताब जो भस्म होते हैं। और केवल पुराने हिसाब किताब नहीं, ब्राह्मण जीवन में भी कई विकर्म हमारे द्वारा होते रहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम पूरा बाबा के श्रीमत प्रमाण चलते हैं, कहीं ना कहीं श्रीमत में चूक होती है, हम मन मत पर चल जाते हैं या दूसरों की मत पर भी चल जाते हैं। उस स्थिति में 100 गुना दंड होता है। पूर्व जन्मों के हिसाब किताब चुकतू करना शायद इतना कठिन नहीं है, जितना कि ब्राह्मण बनने के बाद जो बोझ आत्मा के ऊपर, पाप कर्मों का बोझ आत्मा के ऊपर चढ़ता है। तो जब भी हम विस्मृति में आते हैं उस समय ये होता है कि वो विकर्म का बोझ बनता है। तो हर दिन ये अभ्यास करना बहुत जरूरी है कि कुछ समय अवश्य हमारी वो स्थिति ज्वालामुखी योग की स्थिति बने, जो मेरे विकर्म है रोज का रोज हिसाब किताब रोज खत्म कर देना है। रोज हम तीनों पार्ट बजाते हैं, ब्रह्मा का पार्ट भी बजाते हैं जब दिन शुरू होता है, तो स्थापना का पार्ट होता है वो ब्रह्मा का पार्ट होता है। पूरे दिन की हम अपनी दिनचर्या, अपना स्वमान वो हम निश्चित करते हैं, और दूसरा पूरे दिन जो होता है वो विष्णु का पाठ होता है, उसकी पालना करना, उसमें उन्नति करना। और रात को जब हम बाबा को चाट देते हैं और योग अभ्यास करते हैं तब हम शंकर का पाठ भी बजाते हैं। ठीक है, तो योग की स्थिति कैसी हो? जब पूरी तरह परम धाम में बिंदु रूप बीज रूप स्थिति में सिर्फ एक बाबा और मैं, दूसरा कोई नहीं, और जितना समय आप उस स्थिति में रहना चाहें, अगर आप सोचते हैं कि 15 मिनट मेरी यही स्थिति होनी चाहिए और 15 मिनट मैं बिल्कुल उस स्थिति में हूं, तभी वो एकाग्रता से मन बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं कि एक मिनट परम धाम में फिर एक मिनट में नीचे आ गए फिर याद आया नहीं वो बिंदु रूप का ज्वाला रूप स्थिति का योग का अनुभव करना है, फिर गए परम धाम में फिर कोई बात याद आई फिर नीचे आ गए, ऐसी स्थिति नहीं। लेकिन पूरी तरह से हम उस स्थिति में स्थित हैं तो फिर हमारे विकर्म विनाश होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं ना कि आप सूरज की गर्मी में कोई पेपर रख देते हैं तो वो नहीं जलता है, लेकिन अगर हम लेंस से उसको फोकस करते हैं पूरी किरणें एक बिंदु पर एकाग्र हो जाती हैं तो फिर कुछ ही मिनट में कागज चल जाता है। तो वो शक्ति कहाँ से आई? फोकस से, जो पूरी एकाग्रता हुई। ऐसा नहीं कि सूर्य में गर्मी नहीं है या सूर्य कागज नहीं जला सकता, लेकिन जब वो शक्तियां बिखरी हुई हैं तो वो विनाश नहीं कर सकती, लेकिन जब वो पूरी तरह से एकाग्र हो जाती हैं, इसीलिए यादगार है कि शंकर ने जब आंख खोली तो ज्वाला प्रकट हुई, तीसरे नेत्र से वो ज्वाला प्रकट हुई और इतनी पावरफुल ज्वाला थी कि वो कहते हैं प्रलय हुई। बाबा तो कहता है कि प्रलय नहीं लेकिन महाविनाश हुआ। वो यादगार किसका? हमारी संपूर्ण स्थिति का यादगार है कि उस संपूर्ण स्थिति में तीसरा नेत्र ज्ञान का नेत्र है, वो इतनी श्रेष्ठ स्थिति होती है, इतनी एकाग्रता होती है उसमें कि हम जो चाहें, जैसे बोध चाहें, जैसे विकर्म चाहें तुरंत भस्म कर सकते हैं। लेकिन वो स्थिति बनाने के लिए भी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। पूरे दिन मन में शुभ चिंतन चलना चाहिए, ज्ञान का सिमरण चलना चाहिए। आप सोचें कि मैं बैठूं योग में और मेरी वो स्थिति बन जाएगी, है ना? उस पर वो पूरे दिन की दिनचर्या पर उसका आधार है। अगर पूरे दिन की दिनचर्या में वेस्ट नहीं है, कई बार बुद्धि छोटी छोटी बातों में उलझी हुई होती है, कितनी बातें होती हैं दिन भर में, अगर मन उनमें ही उलझा रहेगा तो फरिश्ता स्थिति का अनुभव होगा, लाइट स्थिति का अनुभव होगा, और फिर हम चाहें कि मेरी योग की वो एकाग्रता हो वो बनेगी? नहीं बनेगी। तो मन को कभी भी उन बातों में उलझाना नहीं है। बातें आती हैं लेकिन बाबा कहता है सारे बोझ मुझे दे दो। किसकी जिम्मेवारी है? मेरा बोझ किसके ऊपर है? हम बच्चे हैं ना, जैसे बच्चे होते हैं उनका बोझ किसके ऊपर होता है? बच्चे निश्चिंत रहते हैं। क्यों बच्चे निश्चिंत होते हैं? उनको पता है हमारी परवाह कौन कर रहा है? माँ बाप कर रहे हैं। तो जो भी आया माँ बाप को कह करके बिल्कुल बिल्कुल हल्के हो गए। कोई बात आई किसके पास जाते हैं? तुरंत, है ना? हमारे सामने कोई बात आई तो किसके पास जाना है? तुरंत बाबा को वो बात दी और मैं बिल्कुल हल्की, मेरा मन हल्का रहे, उन बातों से बिल्कुल न्यारा रहे, जिसको बाबा कहते हैं साक्षी स्थिति में हम रहें। सारा दिन हम जो पार्ट बचाएं, किन्हीं भी बातों का प्रभाव मेरे ऊपर ना आए, उसके लिए मेरी स्थिति साक्षी स्थिति चाहिए। नहीं तो हम विकारी वातावरण में रहते हैं, विकारी वाइब्रेशंस में रहते हैं। पांचों विकार हर आत्मा के अंदर हैं। ब्राह्मण आत्माओं से तो आप थोड़ा समय मिलते हैं जब सेवा केंद्र में आते हैं, थोड़ा समय वो संगठन होता है, बाकी सारा समय किसके साथ बीतता है ना, वही विकारी वातावरण और विकारी वाइब्रेशंस में बीतता है। तो उसका प्रभाव मेरे ऊपर ना आए, मैं उससे भी सेफ रहूं और दूसरों को भी सेफ करूं। मेरा कर्तव्य क्या है फरिश्ता रूप में? फरिश्तों का यादगार क्या दिखाते हैं? अगर वो उड़ते हैं तो वो दूसरों को मदद करने के लिए उड़ते हैं। जैसे मैंने बताया ना, विदेश में क्या मानते हैं, हाँ हम देवताओं से पूरा करते हैं, लेकिन वो फरिश्तों का आह्वान करते हैं कि जब भी हम मुसीबत में फंसेंगे कौन आकर हमें मदद करेगा? फरिश्ते आकर हमें मदद करेंगे। तो हमारा कर्तव्य ये है कि हम स्वयं भी मुक्त रहें और अन्य आत्माओं को भी मुक्त कर सकें। वो मेरी स्थिति होगी तब हम कर सकेंगे, नहीं तो हम ही प्रभाव में आ जाएंगे। और हम प्रभाव में आए तो हमारी उड़ती कला का अनुभव हमें बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो फरिश्ता स्थिति के लिए बाबा हमें यही कहते हैं कि पूरा दिन मेरा श्रीमत प्रमाण जाए, मैं निमित्त हूं, करण करावनहार बाबा है। मैं कर रही हूं ये भान नहीं होना चाहिए, लेकिन करण करावनहार, मेरे द्वारा जो भी कर्म हो रहा है वो बाबा करवा रहा है। और बाबा जैसे इस देह का आधार लेते हैं, शिव बाबा आते हैं वो इस देह का आधार लेते हैं, ब्रह्मा बाबा दादी जी के तन का आधार लेते हैं, तो बाबा कहते हैं कि मैं देह में फंस नहीं जाता हूं, लेकिन मुझे पता है कि मुझे ये कर्तव्य करना है और वापस जाना है। तो ऐसे ही आप भी देह में आओ। अभ्यास क्या होना चाहिए कि मैं इस देह से न्यारी निराकारी आत्मा हूं। तो देह में आओ, कर्मेंद्रियों का आधार लो, कर्म करो, और फिर जैसे ही कर्म पूरा होता है, कर्म से न्यारे होकर के फिर निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। और फरिश्ते ऊंची स्थिति में होते हैं, पहाड़ी पर दिखाते ना फरिश्तों को, तो ऊंची स्थिति कौन सी है? परम धाम की स्थिति, अव्यक्त वतन की स्थिति, मन सदा ही वतन वासी रहे, चाहे वो सूक्ष्म वतन वासी हो चाहे वो मूल वतन वासी हो, परम धाम में रहें, लेकिन मन वहां स्थित होगा। ये अभ्यास बहुत काल का चाहिए, अभी से ये अभ्यास करेंगे तब अंत में ये फरिश्ता स्थिति संपूर्ण रूप से हम अनुभव कर सकेंगे। और हमेशा बाबा कहता है ये समझो कि मैं मेहमान हूं इस संसार में, मैं मेहमान हूं। एक और बाबा बात कहता है ये समझो मैं अवतार हूं। मतलब क्या समझना है? हम इस दुनिया के नहीं हैं। ब्राह्मण बने माना हाँ, इस दुनिया के नहीं है माना, जैसे अभी बोला मरजीवा है, जीते जी हम मर चुके हैं। तो अगर मैं समझती हूं कि मैं मेहमान हूं, तो मेहमान का कभी कहीं लगाव नहीं होता, उसको पता है कि मुझे यहां सदा नहीं रहना है। आप जैसे आप बाबा के घर में मधुबन में भी आए हैं, अपना घर है, फिर भी हमें पता है कि हम सिर्फ कितने दिन रहने वाले हैं। स्वर्ग है, बहुत सुंदर है, बहुत पवित्र वातावरण है, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि मुझे जाना है ना। तो लगाव होगा यहाँ पर किसी चीज से या किसी व्यक्ति से, जहां ये स्मृति रहती है कि हम यहाँ के नहीं हैं, यहाँ से जाने वाले हैं, तो अपने आप मन उपराम रहता है। तो बाबा कहता है इस दुनिया के लिए ये हमेशा संकल्प रखो कि हम इस दुनिया के नहीं हैं, हम परम धाम निवासी हैं, हम सूक्ष्म वतन वासी हैं, सिर्फ थोड़े समय के लिए कर्तव्य करने के लिए, वो भी धर्म स्थापना के कर्तव्य करने के लिए बाबा ने मुझे यहाँ रखा है। ये तन मुझे सेवा अर्थ मिला है,
जो कुछ भी मेरा है, चाहे वो मेरे विचार हैं, चाहे वो मेरे बोल हैं, चाहे वो मेरे कर्म हैं, जो भी मुझे बाबा ने दिया है, विशेषताएं दी हैं, कलाएं दी हैं, योग्यताएं दी हैं, वो मेरी नहीं है, लेकिन सब सेवा अर्थ मुझे बाबा की अमानत मिली हुई है। सोच सकते हैं ऐसा? या थोड़ा थोड़ा बाबा का है, थोड़ा थोड़ा मेरा है। मेहनत तो मैं करती हूं, तो मेरा ही होना चाहिए ना, क्या कहेंगे? सब कुछ बाबा का है, या ऐसा करने में समय लगता है, या भूल जाते हैं? दो बातें हैं, करना तो चाहते हैं लेकिन याद नहीं रहता है, और या फिर हम समझते हैं कि ये तो सिर्फ बाबा ने कह दिया है, ये कोई प्रैक्टिकल थोड़ी है। व्यवहारिक रूप में क्या ऐसा हो सकता है? कभी हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्या कहेंगे? सब चुप है, इतना इधर ना उधर, ऐसे हाँ या ना तो कर सकते हैं। हो सकता है हाँ, लेकिन निरंतर स्मृति स्वरूप बनने की आवश्यकता है। तो जितना हम स्मृति स्वरूप बनते हैं, उतना स्थिति का अनुभव स्वतः होता है, क्योंकि स्मृति से स्थिति होती है। और स्मृति कहाँ से रहेगी? रोज बाबा की मुरली में हम जो भी ज्ञान सुनते हैं, उस ज्ञान को जितना हम यूज करते जाएंगे, यूज करना है, इसीलिए विचार सागर मंथन की बात बाबा कहता है, तब हमारी ये स्थिति बनने लगेगी। तो रोज अपने आप को याद दिलाना है कि मैं इस दुनिया में अवतरित आत्मा हूँ, बाबा के कार्य के लिए बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, और मेरा सब कुछ जो है वो बाबा की अमानत है, मेरा नहीं है, लेकिन सब कुछ तेरा है। फिर सोचते हैं, इतनी जिम्मेवारियां तो है ना, बच्चे हैं, बच्चों की शादी करनी है, या उनकी नौकरी लगे, या जो भी और भी कई, कोई बीमार हो गया उसकी संभाल करनी है, बिजनेस में कुछ ऊपर नीचे होता है, कारोबार भी तो बहुत होता है, तो बाबा को सौंप करके कैसे चलेगा? बाबा थोड़ी करने आएगा, करना तो मुझे है, क्या कहेंगे? इतना निश्चय बुद्धि हो सकते हैं कि पूरी तरह से बाबा सब कुछ तेरा है, इतना हल्का महसूस करके कारोबार चला सकते हैं? ये अपने आप को चेक करना है। और जितना हमें मना संशय का, बाबा कहता है कि जरा अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती, निश्चय जितना दृढ़ होगा, जितना 100% होगा, उतना आप बाबा की मदद महसूस करेंगे। इसको बाबा कहता है हिम्मते बच्चे मद दे बाप, आपको पता ही नहीं चलेगा सब कुछ कैसे हो रहा है। और फिर साक्षी होकर देखने का मतलब, अगर कुछ हो भी रहा है मानो, तो मुझे निश्चय है कि हर बात में कल्याण है, हर बात में कल्याण है। संगम युग में कुछ अकल्याण हो भी नहीं सकता, और अगर हो रहा है तो मेरा हिसाब किताब चुक्त हो रहा है, तो हम हल्के हो रहे हैं, क्योंकि कई तरह से हमारे हिसाब किताब चुक्त होने, कई बार हम योग बल से पूरा चुक्त नहीं कर पाते हैं। मेरा योग बल उतना पावरफुल नहीं है कि मैं अपने सारे विकर्म योग बल से विनाश कर पा रही हूँ, तो कैसे आएगा मेरे सामने? कभी शरीर के रूप में आएगा, बीमारी के रूप में, कभी संबंधों के कर्म बंधन के रूप में, किसी ना किसी रूप में मेरे सामने हिसाब किताब तो आएगा ही। तो वो चुक्त हो रहा है, खत्म हो रहा है, बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे तो फिर हम फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। हम ब्रह्मा बाबा के बारे में सुनते हैं, बाबा को ही फॉलो करने को बाबा हमें कहते हैं। अगर हमें इस ब्राह्मण जीवन में किसी को फॉलो करना है तो किसको करना है? और ब्रह्मा बाबा ही हैं जो नंबर वन फरिश्ता बने। तो फरिश्ता भी कुछ होता है, ये ब्रह्मा बाबा को भी नहीं पता था। आपने सुना होगा कि कैसे ब्रह्मा बाबा को पता चला कि मुझे अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है। जब गुलजार दादी जी ध्यान में जाने लगी थी, बहुत छोटे थे वो उस समय, तो उन्होंने ध्यान में देखा कि ब्रह्मा बाबा डबल लाइट रूप में, बिल्कुल लाइट के आकार में है, लाइट के कार्ब में है। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं जो नीचे बाबा देखती हूँ उससे तो ये बाबा बिल्कुल अलग है तो वही, लेकिन ये लाइट के हैं और वो तो शरीरधारी हैं। तो जब वो नीचे आई तो उन्होंने मम्मा को ये बात बताई, डायरेक्ट वो बाबा से बात नहीं करते थे, पहले मम्मा को बताते थे। तो मम्मा को बताया कि मम्मा मैंने ऊपर जो बाबा देखा वो अपने बाबा से अलग है। तो मम्मा ने उसे सारा पूछा, फिर ब्रह्मा बाबा को सारी बात समझाई कि ऐसे ऐसे आज गुलजार बच्ची ये देखकर आई है। तो बाबा को भी समझ में नहीं आया, बाबा ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऊपर कोई अलग ब्रह्मा कैसे हो सकता है, मैं तो यहां हूं। तो उन्होंने कहा पूछ कर आना उससे, उसको दोबारा भेजो और उसको बोलो वो ऊपर से पूछ कर आए कि वो कौन है, जो ऊपर है वो कौन है। तो फिर जब वो गई तो उसने पूछा आप कौन है, तो उसने कहा जो नीचे ब्रह्मा है, साकार ब्रह्मा है, मैं उसका ही संपूर्ण स्वरूप अव्यक्त ब्रह्मा हूं, और वो जो नीचे साकार ब्रह्मा है उसको पुरुषार्थ करके ये संपूर्ण स्वरूप प्राप्त करना है, इस अंतर को जो देह का अंतर है उसको समाप्त करके उसको पूरी तरह से लाइट स्वरूप बनना है। तब ब्रह्मा बाबा को समझ में आया कि मेरा पुरुषार्थ वो होना चाहिए, और उसके बाद से बाबा ने विशेष तपस्या प्रारंभ की। और हमारी दादियां सुनाती हैं कई बार कि अपने अंतिम दिनों में बाबा जो थे वो बिल्कुल बिल्कुल लाइट स्वरूप दिखाई देते थे, और वो जब बाबा के सामने जाते थे, दृष्टि भी लेते थे, तो अशरीरी हो जाते थे, अपने देह के भान को पूरी तरह से भूल जाते थे। तो यही बाबा हमसे चाहते हैं, यानी हमें बाप समान बनना है ना, बाबा के समान स्थिति को प्राप्त करना है। तो कितना अंतर है हम अपने आप को चेक करें, हालांकि हरेक की संपूर्ण फरिश्ता स्थिति अलग अलग होगी, सबकी एक समान तो नहीं होगी, क्योंकि हरेक की सतो प्रधान स्टेज अलग अलग है, एक जैसी नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी हरेक आत्मा की संपूर्ण स्थिति तो है ही, और उस स्थिति को मुझे ब्राह्मण जीवन में प्राप्त करना ही है, वो लक्ष्य है हमारा। तो वो कितना अंतर है उस डबल लाइट स्थिति तक पहुंचने में, उस अंतर को मुझे समाप्त करते रहना है। और उसके लिए बाबा ने क्या किया कि बाबा जो भी कर्म करते थे, हर कर्म करते हुए अपने को फरिश्ता स्वरूप अनुभव करते थे। बाबा ने कई बार मुरलियों में भी ये बात कही है कि जो भी कर्म आप कर रहे हैं, संसार में बहुत हल्के कर्म भी आप कर रहे हैं, मानो हाँ आप खाना बना रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, या जो भी छोटे मोटे काम होते हैं घर के, सभी समय तो बुद्धि लगाने का काम नहीं होता है, तो कोई भी कर्म करते हुए, अनाज भी साफ कर रहे हैं मानो, तो बाबा कहता है भले कर्म साधारण दिखता हो लेकिन मेरी स्थिति ऊंची हो। अगर वो स्मृति होगी कि मैं डबल लाइट फरिश्ता रूप में, लाइट के कार्ब में वो कर्म कर रही हूँ, ये देह नहीं लेकिन ये देह अव्यक्त स्थिति में, फरिश्ता रूप स्थिति में है, अनुभव कर सकते हैं या मुश्किल है, उसको विजुलाइज करना कहते हैं, कि यदि हम अपने मन में उस स्वरूप को बना लेते हैं और फिर बार बार उसको इमर्ज करते हैं तो फिर वो सत्य होने लगता है। लेकिन शुरू में कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो थोड़ा कठिन लगता है, उसमें अटेंशन देना पड़ता है, लेकिन जब अभ्यास करते हैं तो वो हमारा संस्कार बनने लगता है, फिर वही हमारा ओरिजिनल स्वरूप हो जाता है। ऐसे ही निराकारी स्थिति के लिए भी आत्मा कहते हैं, बाबा कहते हैं, जैसे डबल लाइट स्थिति कहते हैं ना, तो एक तो निराकारी वो लाइट है, आत्मा की लाइट है, और दूसरी लाइट इस शरीर को भी लाइट में देखना है ना, और एक लाइट है कि बिल्कुल मन हल्का हो, किसी भी प्रकार का बोझ मेरे मन पर ना हो। तो जितने भी बोझ हो सकते हैं उनको भी मैं कैसे हल्का करूं, वो बाबा के श्रीमत प्रमाण रोज मुझे वो अभ्यास करना है, और ये भी स्मृति में दृढ़ करने का अभ्यास करना है कि मैं फरिश्ता ही ये कर्म कर रहा हूं। तब बाबा की वो जो स्थिति बनी, उससे कई बार ऐसा होता था कि लोग जब बाबा से मिलने आते थे तो उनको साक्षात्कार हो जाते थे। क्यों होते थे? जैसे आदि में भी बाबा कहता है, शुरू शुरू में भी जब ज्ञान शुरू हुआ, यज्ञ शुरू हुआ, तो भी ब्रह्मा के साक्षात्कार होते थे, ब्रह्मा और कृष्ण के साथ साथ साक्षात्कार होते थे। तो जो आदि में हुआ वो अंत में भी होना है। तो बाबा हमसे यही कहते हैं आपकी फरिश्ता स्थिति होगी, डबल लाइट स्थिति होगी, तो ही साक्षात्कार होंगे, तब वो साक्षात्कार का पार्ट फिर से शुरू होगा, और पूरे संसार में वो फरिश्ते श्वेत वस्त्रधारी, फरिश्तों को वैसे भी श्वेत वस्त्रधारी ही दिखाया जाता है ना, तो वो फरिश्ते नजर आएंगे और फिर परिवर्तन होगा। तो कोई भी कर्म करते हुए सारा दिन मुझे ये स्मृति बार बार लानी है। इसको बाबा कहते हैं हर घंटे अभ्यास कर लो। चलो बुद्धि बिजी है, हम कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, हाँ सोल कॉन्शियस की बजाय कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं ना, लेकिन फिर भी जैसे एक एक मिनट का यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल बजाते हैं, हाँ हर घंटे में बजाते हैं। क्यों बजाते हैं? स्मृति दिलाने के लिए। तो अपने लिए भी आज तो विज्ञान के इतने अच्छे साधन हैं, हम अपने लिए वो फिक्स कर सकते हैं, आप मोबाइल में फिक्स कर सकते हो कि हर मिनट मुझे वो स्मृति आ जाए कि मुझे इस समय निराकारी स्थिति का अभ्यास करना है। फिर वो मेरी निराकारी स्थिति हिलनी नहीं चाहिए, ऐसे नहीं कि मैं आत्मा हूं ये सोचा फिर दूसरे ही मिनट हाँ किसी की याद, किसी दूसरे का संकल्प आ गया, नहीं। आत्मिक स्थिति माना फिर अशरीरी आत्मिक स्थिति का ही अनुभव हो। फिर बीच में कभी फरिश्ता स्थिति, बाबा इसको रूहानी ड्रिल कहता है, मेरी ये ड्रिल रुकनी नहीं चाहिए। जैसे शारीरिक ड्रिल हेल्दी बनाती है, ऐसे ही ये रूहानी ड्रिल ये मेरे मन को इतना शक्तिशाली बना देती है कि फिर मन को हम जहां जैसे जब स्थित करना चाहें वो हम स्थित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये निरंतर अभ्यास और बहुत काल का अभ्यास होगा तब फरिश्ता स्थिति बनाना हमारे लिए सहज होगा। अब फरिश्ता स्थिति में हम कैसे मनसा सेवा करेंगे? तो वो अभ्यास अमृत वेले से ही शुरू होता है। फरिश्ता माना क्या? वो सकाश देने वाला है, लाइट का स्वरूप। आप देखो अपना और देखो कि आप, क्योंकि फरिश्ते तो उड़ जाते हैं, एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाते हैं। जो सूक्ष्म शरीर है उसकी गति मन की गति के बराबर होती है। जैसे हम, बाबा नहीं कहते आत्मा शरीर से निकली तो उसको कितना टाइम लगता है लंदन पहुंचने में, हाँ, या परमधाम पहुंचने में कितना टाइम लगता है। हमारे संकल्प को परमधाम पहुंचने में कितना टाइम लगता है, कितना दूर है परमधाम, सबसे दूर है। तो वही फरिश्ते की स्थिति है, क्योंकि मन की गति से फरिश्ता चलता है। तो संसार में कहां भी जहां हम सकाश देना चाहते हैं, चाहे वो शुभ भावना के रूप में हो, चाहे वो कल्याण की भावना के रूप में हो, चाहे वो मुक्ति, जीवन मुक्ति का संदेश देने के रूप में हो, या आप किसी विशेष आत्मा को, एक होता है पूरे विश्व की आत्माओं को सकाश देना, और एक होता है किसी की मैं व्यक्तिगत रूप से सेवा करना चाहती हूँ, विशेष रूप से किसी आत्मा को मैं चाहती हूँ कि इसका कल्याण हो, या किसी का कर्म बंधन है, या किसी का कर्म का हिसाब किताब है, यानी कोई रोगी है। जैसे ब्रह्मा बाबा, हम सुनते हैं कैसे विश्व किशोर दादा जब बीमार थे, आप सबने ये अनुभव सुने होंगे, तो बाबा ने पूरी रात जागकर उनको सहयोग दिया, क्योंकि वो बहुत दर्द में थे और नींद की गोली से भी उनको नींद नहीं आ रही थी। तो बाबा ने विशेष बैठ करके उस आत्मा को ना, विश्व किशोर भाव को, उनको सकाश दिया और उस रात वो बहुत अच्छा सोए। तो किसी भी रूप में हम आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं, लेकिन पहले हमारी उतनी ऊंची स्थिति होनी चाहिए। मनसा सेवा करना कहना बहुत आसान है और आसान लगती भी है, लेकिन सबसे कठिन है। देखो कर्मणा सेवा करना सबसे इजी है, क्योंकि कर्म का अभ्यास होता है, कर्मेंद्रियों से कर्म का अभ्यास है ही, है ना, तो हम तुरंत कोई भी कर्मणा सेवा कर लेते हैं। वाचा सेवा उससे थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि उसमें कर्मणा से थोड़ा ज्यादा अभ्यास चाहिए। तो अभ्यास करके आप वाचा सेवा भी कर सकते हैं, धीरे 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 परफेक्ट हो जाते हैं उन ज्ञान की बातों को समझाने में। लेकिन मनसा सेवा के लिए मनसा सदा निस्वार्थ हो, सदा शुद्ध हो, सदा श्रेष्ठ हो, सदा परोपकार की भावना हो और सदा दातापन की भावना हो। ऐसे नहीं कि आज मेरी शुभ भावना है और कल मेरी भावना उसके लिए बदल गई। भावनाएं बदलती रहती है ना, आज कोई मेरे साथ अच्छा है तो हम उसके प्रति सदा ही अच्छी भावना रखते हैं, लेकिन कहीं मेरा हिसाब किताब सामने आ गया, उस आत्मा ने मेरे से अच्छा व्यवहार नहीं किया, या कोई मुझे ऐसे वचन बोल दिए, या चलो कोई कर्म ही मेरे प्रति ऐसा कर दिया जो मेरे दिल पसंद नहीं है, तो मेरी भावनाएं बदलती हैं, बदलती हैं, बदल जाती हैं, और फिर मैं उसकी मनसा सेवा कर रही हूं तो मेरे वाइब्रेशन पहुंचेंगे? मेरे वाइब्रेशन पहले ही कमजोर हैं, नेगेटिव संकल्पों के वाइब्रेशन कैसे होंगे? फिर हम सोचते हैं मनसा सेवा तो काम नहीं करती है, कितना समय से मैं आत्मा के लिए योग लगा रही हूं, लेकिन भावना कैसी है? तो इसीलिए मनसा सेवा लगती आसान है, हाँ बैठ करके वाइब्रेशन ही तो देना है, लेकिन उतनी एकाग्रता और उतनी मन की शुद्धि चाहिए, जरा भी स्वार्थ भाव ना हो। हाँ, कई बार अपनी ही कोई इच्छा भी होती है, सूक्ष्म इच्छा भी उसमें छुपी हुई होती है। अगर हम किसी की सेवा करना चाहते हैं तो कहीं थोड़ा बहुत स्वार्थ भी उसमें होता है, तो स्वार्थ भाव भी नहीं, पूरा निस्वार्थ भाव हो। बाबा कहता है विधि पूर्वक जब हम करते हैं तब हमें उसकी सिद्धि मिलती है। कोई भी कार्य बिना विधि से किया जाएगा तो सिद्धि मिलेगी? हाँ, आपको अगर सब्जी भी बनानी है तो हर एक सब्जी बनाने की एक विधि होती है, उस विधि से सब्जी बनेगी तो ही पूरा स्वाद होगा, और उस विधि से नहीं बनी तो कहेंगे कैसी सब्जी बनाई है, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ भी हम करते तो हैं मनसा सेवा, हम सभी करते हैं, बाबा के सभी बच्चे कोई भी नहीं है जो ये सेवा नहीं करते हैं, लेकिन अगर हमारी सही विधि नहीं है तो फिर हमें वो सिद्धि, वो सफलता अनुभव नहीं होती है। तो अमृत वेले ही हम पूरे विश्व के ग्लोब को इमर्ज करके, विश्व की आत्माओं को इमर्ज करके, जैसे ब्रह्मा बाबा हम सब की सेवा कर रहे हैं, हमें अनुभव होता है ना कि बाबा की सकाश, बाबा की शक्ति हमें मिलती है, बाबा की पालना हमें मिलती है, अनुभव होता है या नहीं होता है? हाँ, या ब्रह्मा बाबा को तो हमने देखा ही नहीं है। हाँ, कई बार ऐसे भी कहते हैं कई भाई बहने कि बहन जी बाबा तो कहता है बाबा को फॉलो करो, हमने तो देखा ही नहीं है तो बाबा को कैसे फॉलो करेंगे? जिन्होंने देखा है उनको तो फॉलो करना सहज होता है, लेकिन हमारे लिए सहज है या मुश्किल है? हाँ, आप में से कोई है जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा है? कोई भी नहीं है। तो सभी अव्यक्त रचना है, अव्यक्त बाबा की संकल्प से आप सभी पैदा हुए हैं, ऐसा ही कहेंगे ना, अलौकिक जन्म हुआ है। तो क्या कहेंगे, ब्रह्मा बाबा को फॉलो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं जरूर, क्योंकि हमने बाबा के चरित्रों को अनुभव किया है, और बाबा भी समय प्रति समय मुरली में हमें वो रिवाइज कराते रहते हैं। शिव बाबा भी मुरली में रिवाइज कराते हैं, नहीं कराते हैं, बाबा ने ऐसे किया आप ऐसे करो, ठीक है। तो ऐसे प्रयोग की बात की थी, तो हमने ऐसे कई प्रयोग किए हुए हैं, लेकिन समय के अनुसार मैं आपको सिर्फ एक सुनाऊंगी कि कैसे मदद मिलती है आत्माओं को। मेरा प्रोफेशन रहा है मेडिकल, तो मैंने ज्यादा पेशेंट्स पर ही ये प्रयोग किए हुए हैं मनसा सेवा के। एक बीच में स्वाइन फ्लू फैला था, आपको पता होगा, तो ऐसे ही कोई हमारे जानने वाले उनको स्वाइन फ्लू हुआ, और बहुत सीरियस। जब स्वाइन फ्लू होता है तो वो लंग्स, फेफड़ों पर असर करता है, और सांस लेना जो है वो मरीज अपनी उसकी बंद हो जाती है, क्योंकि निमोनिया होता है उसके अंदर। तो फिर उनको आर्टिफिशियल सांस, मशीन से सांस दी जाती है, जिसे वेंटिलेटर कहते हैं। तो वो बहन जो है वो वेंटिलेटर पर थी आईसीयू में, और वो भाई का, उनके युगल का मेरे को फोन आया, मुझे जानते थे तो उन्होंने मुझे फोन किया कि दीदी ऐसे ऐसे हैं, और वो ऐसे सोचते हैं कि ये वहां रहते हैं तो भगवान के ज्यादा नजदीक हैं, और अगर ये कुछ कहेंगे तो शायद ज्यादा उसका असर होगा। तो उन्होंने मुझे ऐसे रिक्वेस्ट की कि ये बहुत सीरियस हैं और डॉक्टर कहता है बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो आप बाबा से कहो ऐसे। तो मैंने कहा, मैंने उनको समझाया, मैंने कहा जरूर मैं आपके लिए योग करूंगी, लेकिन फिर भी मैं ऐसे नहीं कहती हूँ कि ये ठीक ही हो जाएंगे, वो हर एक का होता है। जो भी मैंने उनको अच्छी तरह से समझाया वो बात को, पर भी मैंने उन्होंने कहा था तो मैंने उस बहन के लिए एक घंटा, शाम को हम योग करते ही हैं तो हमने जब योग किया तो मैंने ये संकल्प किया कि मेरा ये योगदान उस आत्मा के प्रति है, और मैंने उनको इमर्ज करके भी वो सकाश दी। तो ऐसे 2-3 दिन तक मैंने उसके लिए योग किया, और फिर 4 दिन के बाद उनका फोन आया कि अब वो पहले से बेहतर है ना, जहां बचने की उम्मीद नहीं थी पहले से उसके जो पैरामीटर्स हैं वो सारे ठीक हो रहे हैं। फिर मैंने उतना, अब एक घंटा तो नहीं, लेकिन फिर भी बीच बीच में जब भी मैं योग करती थी उस आत्मा के निमित्त मैं सकाश देती रही, और फिर एक हफ्ते के बाद उसका फोन आया कि उनका वेंटिलेटर हट गया है, और डॉक्टर कहते हैं कि ये तो मिरेकल है, ऐसे कभी भी इस बीमारी में ऐसे मरीज, इस स्टेज तक पहुंचे हुए मरीज कभी बचे नहीं है, ये बच गई है, ये बहुत बड़ा चमत्कार है ऐसे। और उससे वो नॉर्मल वार्ड में आ गए, और फिर 15 दिन और वो रही वहां, और फिर धीरे धीरे ठीक होकर अभी तक भी वो बहन पूरी तरह ठीक है। तो ये ऐसे समय पर उस आत्मा को मदद देना, हम ये नहीं कहते हैं, बाबा भी कभी ये गारंटी नहीं लेता है कि मैं आपकी बीमारी ठीक कर दूंगा या मैं डॉक्टर की तरह काम करता हूं, लेकिन योग बल का अगर हम प्रयोग करेंगे तो वो कार्य अवश्य करता है। अगर हम हिम्मत रखते हैं किसी भी काम में तो बाबा फिर हमें मदद करते हैं, लेकिन बाबा ही कर देगा, हम पूरा बाबा के ऊपर छोड़ देंगे ऐसे बाबा नहीं करता है। तो इसीलिए बाबा ने हमें विधि दी हुई है, और उस विधि को अगर हम सही तरह से प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें सफलता मिल जाती है। तो ये तो मैंने एक बात बताई आपको, ऐसे मेरे करीब 8-10 अनुभव हैं जब इस तरह के पेशेंट्स को जब हमने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से और बाबा से वो सकाश लेकर के उनको सकाश दी तो सचमुच उनको फर्क पड़ा और उनको जैसे जीवन दान मिला। इवन मैंने स्वयं पर भी किया हुआ है, मैं भी इस स्थिति से गुजरी हूँ क्योंकि हम सबके हिसाब किताब है, मैं भी बहुत बड़े एक्सीडेंट से पास हुई एक बार, और बिल्कुल ये स्थिति थी कि बचेंगे या नहीं बचेंगे, लेकिन मैंने कोई संकल्प नहीं, कोई संशय नहीं, पूरा निश्चय बुद्धि होकर और पूरा अशरीरी स्थिति में बाबा के साथ अपना योग रखा, और इतनी सहज रूप से मैं उसे पार हुई कि मुझे ऐसे लगा जैसे सूली से कांटा कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि वो सूली भी फूल बन गई, वरना सूली से कांटा भी जैसे दर्द मुझे या तकलीफ मुझे महसूस नहीं हुई, और बहुत कम समय में मैं उस स्थिति से बाहर आ गई। तो हम स्वयं के प्रति भी कर सकते हैं, अपने संस्कारों को बदलने के लिए भी कर सकते हैं, और अन्य आत्माओं के प्रति भी, वो तो हमारा फर्ज ही है, हम विश्व कल्याणकारी हैं, जैसे अभी बताया कि हम हैं ही अवतार इस दुनिया में, हम क्यों हैं, बाबा ने हमें क्यों रखा है, ये ब्राह्मण जीवन हमारा है ही सेवा के निमित्त, तो वो तो हमारा कर्तव्य है और उस तरह से आत्माओं को हम सहयोग देंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी मनसा स्थिति ऐसी होनी चाहिए, चाहे हम कर्मणा भी कर रहे हैं, बाबा कहता है कर्मणा के साथ साथ भी मनसा हो तब पूर्ण सफलता मिलेगी, केवल कर्मणा सेवा करेंगे और मनसा श्रेष्ठ नहीं है तो भी पूर्ण सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, तो क्या समझते हैं, फरिश्ता बनकर जाएंगे या फरिश्ता बनने में अभी टाइम लगेगा? नहीं, वो तो अंतिम स्थिति है। जरूर हम रोज अपना वो अभ्यास जारी रखें तो हर दिन हम डबल लाइट अनुभव करेंगे और हर दिन हम महसूस करेंगे कि बाबा सदा मेरे साथ हैं। हम बाबा के साथ माना सर्व रिश्ते कंबाइन है, माना सर्व रिश्ते मेरे बाबा के साथ हैं और मैं सचमुच फरिश्ता हूँ। ठीक है, ओम शांति। You।
स्वयं को सूक्ष्म वतन में अपने सूक्ष्म शरीर में जो लाइट का शरीर है प्रकाश की काया में बाबा के पास बाबा के सम्मुख अनुभव करें। स्वयं बाबा भी फरिश्ते के रूप में मुझ आत्मा को बहुत स्नेह से दृष्टि दे रहे हैं। और मैं बाबा के उस प्यार में अपने को समाया हुआ महसूस कर रही हूँ। बाबा के वरदान बाबा की शक्तियां मुझे अनुभव हो रही हैं। और अब मैं बाबा के साथ इस विश्व के भ्रमण पर हूँ अपने सूक्ष्म शरीर में। मेरी स्थिति बाप समान है और मैं सर्व गुणों से सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। बाप समान मास्टर शांति का सागर मास्टर प्रेम का सागर सुखदाता स्वरूप है मेरा। और मुझे बाबा के साथ इस विश्व की दुखी और अशांत आत्माओं को शांति की सकाश देनी है। विश्व के ग्लोब को इमर्ज करें और महसूस करें बाबा मेरे द्वारा शांति की किरणें पूरे विश्व पर फैला रहे हैं। कुछ समय इसी स्थिति में मन रहे। और अब मंदिरों में भक्त आत्माएं ईश्वर से कुछ ना कुछ मनोकामना लिए हुए भक्ति कर रही हैं। तो मैं बाबा के साथ उन आत्माओं को उनकी भक्ति का फल देने के लिए सकाश दे रही हूँ। इस विश्व में बहुत आत्माएं दुखी और रोगी हैं। मुझे उन आत्माओं को भी शांति का, शक्ति का, सहयोग बाबा के द्वारा देना है और मैं बाबा के साथ लाइट स्वरूप द्वारा, फरिश्ता स्वरूप द्वारा, शक्तियों का सकाश दे रहे हूँ। मैं स्वयं के प्रति भी बाबा की दृष्टि से वरदान ले रही हूँ। स्वयं को मैं लाइट हाउस की तरह अनुभव कर रही हूँ। माइट हाउस की तरह मैं लाइट हाउस हूँ, माइट हाउस हूँ। डबल लाइट, एकदम हल्कापन और न्यारापन मुझ आत्मा को अनुभव हो रहा है। मेरे सर्व संबंध बाबा के साथ हैं। बाबा ही मेरा संसार है। बाबा के साथ से मैं स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान अनुभव करती हूँ, क्योंकि मेरा साथी स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है। मेरी सर्व जिम्मेवारियां बाबा की है, मैं निमित्त हूँ। मेरा सब कुछ बाबा का है, ये तन मन और धन और संबंध, ये ब्राह्मण जीवन बाबा की अमानत है। मैं पूरी तरह बाबा को मन और बुद्धि से समर्पित हूँ। इसलिए मैं डबल लाइट, महसूस करती हूँ। मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूँ। लौकिक कार्य में भी अलौकिकता समाई हुई है, क्योंकि मैं बाबा की याद में बाबा को समर्पित कर हर कर्म करती हूँ। मेरे सब बोझ, मेरी सब चिंताएं मैंने बाबा को समर्पित की है। बाबा मुझे मेरे हिसाब किताब और विकर्म विनाश करने में मुझ आत्मा को सहयोग देकर कर्म बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करा रहे हैं। बाबा के साथ की ये घड़ियां मुझ आत्मा को अतिंद्रिय सुख का अनुभव देने वाली हैं। उड़ती कला का अनुभव कराने वाली हैं। मैं बाबा की याद में बाबा के स्नेह में स्वयं को समाया हुआ लवलीन स्थिति का अनुभव कर रही हूँ।